रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। काठमांडू और धादिंग को जोड़ने वाली नागढोंगा सिसनेखोला सुरंग सड़क का संचालन शुरू। देश की पहली सड़क सुरंग के खुलने से सड़क परिवहन को मिली नई गति। सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हुए सुनसरी में सर्वदलीय बैठक का निर्णय। दीवानगंज और आसपास के क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा निषेधाज्ञा लागू। चिकित्सक पर हमले के विरोध में स्वास्थ्यकर्मियों ने नारायणी अस्पताल की आपातकालीन सेवाओं सहित सभी सेवाएं की बंद। और नाइजीरिया के नारीडोन में आज तड़के हुए आतंकवादी हमले में 31 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। नेपाल के पहले सड़क सुरंग मार्ग नागढोंगा सिसनेखोला सुरंग का आज औपचारिक उद्घाटन किया गया। पूर्वाधार विकास मंत्री सुनील लम्साल, जायका के अध्यक्ष तानाका अकिहिको और नेपाल के लिए जापान के राजदूत मायदा तोरू ने संयुक्त रूप से सुरंग का उद्घाटन किया। जायका अध्यक्ष तानाका ने इसे नेपाल के परिवहन विकास की ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि ये परियोजना नेपाल जापान सहयोग के नए अध्याय का प्रतीक है। उन्होंने सुरंग निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए दोनों देशों के बीच नई तकनीकी सहयोग परियोजना शुरू होने की भी जानकारी दी। जापानी राजदूत मायदा तोरू ने कहा कि यह परियोजना दोनों देशों की दीर्घकालिक साझेदारी का उदाहरण है और इससे नेपाल में सुरंग निर्माण तथा संचालन की तकनीकी क्षमता और मजबूत होगी। 2688 मीटर लंबी इस सुरंग के संचालन से काठमांडू नौबिसे सड़क खंड पर यात्रा समय कम होगा, ट्रैफिक जाम में कमी आएगी और सड़क यात्रा अधिक सुरक्षित एवं सुगम बनने की उम्मीद है। सुनसरी जिला प्रशासन कार्यालय में आज आयोजित सर्वदलीय बैठक ने सभी से सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। प्रमुख जिला अधिकारी वासुदेव घिमिरे की अध्यक्षता में हुई बैठक में दीवानगंज ग्रामीण नगर पालिका 3 के कप्तानगंज में हुई घटना के बाद प्रभावित क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सभी पक्षों द्वारा अपने अपने स्तर पर प्रभावी प्रयास करने का निर्णय लिया गया। ये जानकारी सहायक प्रमुख जिला अधिकारी पोषण लामिछाने ने दी। स्थानीय प्रशासन ने दीवानगंज, घुसकी, कप्तानगंज, भुटहा और हरिनगरा बाजार क्षेत्रों में आज सुबह 7 बजे से निषेधाज्ञा लागू कर दी है। सहायक प्रमुख जिला अधिकारी लामिछाने ने बताया कि प्रभावित क्षेत्र में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है और वहां जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। कप्तानगंज में बीती रात 2 समूहों के बीच विवाद के बाद हुई झड़प में गोली लगने से घायल 24 वर्षीय ओम प्रकाश मेहता की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। बैठक में जिले के प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, सुरक्षा निकायों के प्रमुखों और अन्य संबंधित पक्षों ने भाग लिया। गृह मंत्रालय ने बीती रात सुनसरी में हुई घटना को लेकर वहां के प्रमुख जिला अधिकारी वासुदेव घिमिरे सहित सुरक्षा निकायों के प्रमुखों को वापस बुला लिया है। घिमिरे को गृह मंत्रालय में वापस बुलाकर उनके स्थान पर संखुआ सभा के सीडीओ ईश्वरी प्रसाद अर्याल को भेजा गया है। सुनसरी के दीवानगंज में हुई हिंसा के बाद कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय के प्रमुख डीआईजी विनोद घिमिरे को प्रहरी प्रधान कार्यालय काठमांडू बुला लिया गया है। उनके स्थान पर प्रहरी प्रधान कार्यालय से डीआईजी शेखर खनाल को भेजने का निर्णय लिया गया है। वहीं जिला प्रहरी कार्यालय सुनसरी के प्रमुख एसपी केशव थेबे का तबादला कर उन्हें भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भेज दिया गया है। उनकी जगह वहीं के एसपी पुष्पराज मल्ल को सुनसरी का प्रभार सौंपा गया है। वहीं सशस्त्र प्रहरी बल के डीएसपी नंद किशोर महतो को भी वापस बुलाकर उनके स्थान पर मदन नाथ को नियुक्त किया गया है। दीवानगंज 3 के कप्तानगंज में कल रात 2 समूहों के बीच हुई झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 24 लोग घायल हुए हैं। घटना की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने सह सचिव भूपेन्द्र थापा के नेतृत्व में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है जिसे 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। वीरगंज के नारायणी अस्पताल में चिकित्सक पर हमले और तोड़फोड़ की घटना के विरोध में डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की हड़ताल आज भी जारी रही। स्वास्थ्यकर्मियों ने घंटाघर चौक पर प्रदर्शन कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और सुरक्षा की गारंटी की मांग की। नेपाल चिकित्सक संघ के आह्वान पर निजी अस्पतालों के डॉक्टरों ने भी आंदोलन का समर्थन किया जिससे शहर के अधिकांश अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई और मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अस्पताल प्रशासन ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। हमले की गंभीर रूप से हमले में गंभीर रूप से घायल डॉक्टर प्रमोद राम को बेहतर इलाज के लिए काठमांडू भेजने की तैयारी की जा रही है। इस बीच स्वास्थ्य एवं खाद्य स्वच्छता मंत्रालय ने निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा देते हुए आंदोलनरत डॉक्टरों से तत्काल काम पर लौटने की अपील की है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबु।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबु।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाउजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हाँ, त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। सूचना एवं संचार मंत्री डॉक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा ने कहा है कि वर्षा ऋतु में बाढ़, भूस्खलन नियंत्रण तथा आपदा प्रबंधन के लिए स्थानीय, प्रादेशिक और संघीय सरकारों के बीच समन्वय और सहयोग आवश्यक है। नुआकोट की तादी गांवपालिका की समस्याओं के संबंध में आज मंत्रालय में गांवपालिका अध्यक्ष संतमान तामांग के साथ हुई बैठक में मंत्री डॉ तिमिल सिन्हा ने गांवपालिका के समग्र विकास कार्यों की स्थिति, स्थानीय निकायों द्वारा झेली जा रही समस्याओं, नागरिकों की शिकायतों और अपेक्षाओं की जानकारी ली। शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरियाल ने कहा है कि शिक्षा क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण अधिगम की आवश्यकता है। जनकपुर धाम स्थित रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी कॉलेज परिसर का आज निरीक्षण करने तथा परिसर के प्राध्यापकों के साथ चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि समय की मांग के अनुरूप कॉलेजों को शिक्षा क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षण अधिगम पर विशेष ध्यान देना चाहिए। लुम्बिनी क्षेत्र में आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना पैकेज बनाकर उसका व्यापक प्रचार प्रसार किए जाने पर जोर दिया गया है। वक्ताओं ने कहा कि पर्यटन के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को गति देने और रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विशेष योजना के साथ पर्यटन का प्रचार प्रसार आवश्यक है। नेपाल एसोसिएशन ऑफ टूर एंड ट्रैवल एजेंट्स नाट्टा लुम्बिनी द्वारा बुटवल में आयोजित नेपाल भारत पर्यटन पत्रकार सम्मेलन में वक्ताओं ने आध्यात्मिक पर्यटन के विकास पर विशेष बल दिया। बुटवल उपमहानगर पालिका के प्रमुख खेलराज पांडे ने कहा कि यदि काली गंडकी मार्ग से मुक्तिनाथ जाने वाले लाखों भारतीय श्रद्धालुओं के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जाए तो धार्मिक पर्यटन को उल्लेखनीय बढ़ावा मिलेगा। सार्वजनिक नीति एवं प्रत्यायोजित विधायन समिति की बैठक में सांसदों ने कहा कि राष्ट्र के अस्तित्व और पहचान को सुदृढ़ बनाने के लिए युवाओं में तथ्य आधारित इतिहास के प्रति जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। आज सिंह दरबार में आयोजित समिति की बैठक में सांसदों ने कहा कि आधुनिकीकरण के नाम पर नेपाल के विश्व धरोहर सूची में शामिल ऐतिहासिक स्थलों के मौलिक स्वरूप में परिवर्तन करने वाली गतिविधियों को तत्काल रोका जाना चाहिए। त्रिभुवन विश्वविद्यालय के केंद्रीय इतिहास विभाग के पदाधिकारियों ने कहा कि प्राचीन मठ मंदिरों एवं सांस्कृतिक धरोहरों के ऐतिहासिक महत्व के प्रति पर्याप्त जनजागरूकता का अभाव तथा अप्रमाणित ऐतिहासिक व्याख्याओं के कारण पुरातात्विक धरोहरें नष्ट होती रही हैं और इतिहास का विकृतीकरण बढ़ता जा रहा है। अछाम जिले के कमल बाजार मानसेन सड़क खंड में आज दोपहर कमल बाजार के निकट हुई ऑटो रिक्शा दुर्घटना में घायल 3 लोगों में से एक महिला की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। हादसे में कमल बाजार नगरपालिका 5 निवासी बेला भंडारी की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु जिला अस्पताल अछाम में उपचार के दौरान हुई थी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। नाइजीरिया के नारिडोन में आज तड़के आतंकवादियों ने हमला कर 31 लोगों की हत्या कर दी और कई घरों और दुकानों में आग लगा दी। स्थानीय लोगों के अनुसार हमलावर आधी रात के करीब हथियारों से लैस होकर गांव में घुसे और घर घर जाकर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। मृतकों में किसान, व्यवसायी और 8 बच्चे भी शामिल हैं। हमले में 3 दुकानों, 2 घरों और 2 मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया गया। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि घटना के दौरान सेना को सूचना दी गई थी लेकिन समय पर सहायता नहीं मिली। बताया गया कि इस समुदाय पर इस तरह का ये पहला बड़ा आतंकी हमला है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.1 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। काठमांडू और धादिंग को जोड़ने वाली नागढुंगा सिसनेखोला सुरंग सड़क का संचालन शुरू। देश की पहली सड़क सुरंग के खुलने से सड़क परिवहन को मिली नई गति। सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हुए सुनसरी में सर्वदलीय बैठक का निर्णय। दीवानगंज और आसपास के क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा निषेधाज्ञा लागू। चिकित्सक पर हमले के विरोध में स्वास्थ्यकर्मियों ने नारायणी अस्पताल की आपातकालीन सेवाओं सहित सभी सेवाएं की बंद। और नाइजीरिया के नारिडोन में आज तड़के हुए आतंकवादी हमले में 31 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।